हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम गंगा जी के महिमा का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे आने वाले दो चार दिनों तक विषय यही रहेगा। आज जिस विषय पे चर्चा होगी वो है गंगा स्नान एवं गंगा सेवा, गंगा पूजा आदि, विशेष करके गंगा स्नान। वैसे शास्त्रों में जगह जगह ये आदेश हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान तो अपने विभिन्न रूपों में इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, अपने अर्चा विग्रह के रूप में उनकी सेवा की जाती है, दर्शन करके, आरती उतार के, श्रृंगार करके, भोग चढ़ा के, पूजा आदि करके, अपने नाम के रूप में जब प्रकट होते हैं तो नाम की सेवा की जाती है, विशेषतः कीर्तन और श्रवण के द्वारा, और फिर अपने आप स्मरण भी हो जाता है और हरि नाम के संबंध में हरि नाम की महिमा का वर्णन करना ये भी नाम सेवा है। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के रूप में भी प्रकट होते हैं, तुलसी के रूप में, कि जैसे हमने देखा आज सुबह तुलसी की सेवा भी इसी तरह की जाती है, पूजा अर्चा दर्शन स्मरण श्रवण कीर्तन इत्यादि। श्रीमद् भागवत की सेवा की जाती है श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा। ऐसे जितने भी विभिन्न रूपों में भगवान प्रकट होते हैं इस धरातल के ऊपर, इन सभी रूपों में हमें उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे भगवान का प्राकट्य है उसी प्रकार से सेवा भी होगी। जैसे भगवान जब प्रसाद का रूप स्वीकार करते हैं तो प्रसाद की सेवा केवल नमस्कार या गुणगान करने से नहीं होता, हालांकि वो भी सब करना चाहिए, परंतु मुख्यतः प्रसाद की सेवा होती है उसे ग्रहण करने से। जब प्रसाद की बात हो रही है तो हम क्षमा चाहते हैं कि आज दोपहर आपको प्रसाद के लिए देरी हो गई, आशा करते हैं कि ज़्यादा कष्ट आपको नहीं हुआ होगा, फिर भी इस देरी के लिए खेद है। और प्रसाद के विषय में ये तो कहना चाहिए कि प्रसाद का सेवन हम ग्रहण करके करते हैं, और हिंदी भाषा में या किसी भारतीय भाषा में भी जब प्रसाद की बात की जाती है तो खाना ये शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भगवान के संबंध में जो भाषा है वो बहुत शुद्ध होती है, इसलिए ऐसे शब्दों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। एक बार एक भक्त वृंदावन में प्रवचन दे रहे थे हिंदी में, तो वो कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण के पैर, तो ऐसे उन्होंने शब्द का प्रयोग किया पैर। तो एक साधु वहां बैठे थे, तुरंत उठे, अरे महाराज जी पैर नहीं चरण कमल कहना चाहिए, भगवान के पैर थोड़ी होते हैं ये चरण, ऐसे पैर नहीं कहते। तो उसी तरह से भगवान की श्री विग्रह आदि ऐसे सब शब्द होते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर शब्द होते हैं। तो उसी तरह से जब हम रात को क्या करते हैं, सोते हैं नहीं, विश्राम करते हैं। तो प्रसाद के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए क्या प्रसाद खा लिया। ये खाना ये तो बस साधारण भोजन से संबंधित है। आपने खाना खा लिया? नहीं, खाना खाने नहीं लिया, हमने प्रसाद ग्रहण किया या प्रसाद का सेवन किया। तो खैर, भगवान के ये जितने विभिन्न प्राकट्य हैं उनके भिन्न भिन्न पद्धतियों से सेवा की जाती है। तो भगवान की सेवा, भगवान का रूप धाम के रूप में भी है, धाम के रूप में भी होता है। तो शास्त्रों में बताया है कि धाम का मतलब है वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका इत्यादि, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं इन सब को धाम कहते हैं। साथ साथ में ऐसे पवित्र नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ये भी धाम शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो जब हम धाम सेवा की बात करते हैं तो इसमें गंगा यमुना सेवा भी सम्मिलित है। तो शास्त्र में धाम सेवा के बारे में बताया जाता है कि धाम की सेवा कैसे की जाती है। पहली बात है धाम के बारे में सुनने से, धाम की महिमा का वर्णन जब होता है और जब उसे हम सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है धाम की। जैसे प्रसाद का सेवा, प्रसाद की सेवा एक तरह से होती है, तो धाम की सेवा कैसे होती है इसका वर्णन करने का प्रयास अब हम कर रहे हैं। तो धाम के बारे में सुन के, धाम के महात्म्य, उसकी महिमा और धाम में जो हुए लीलाएं हैं भगवान के, उनके भक्तों के इत्यादि, उनको हमें बड़े बड़े श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। भले हम शारीरिक रूप से धाम में बैठे हों या न हों, यदि हम धाम में बैठे हुए हों पर हमारी चेतना धाम के बाहर है, किसी भौतिक चीज में है, तो धाम में रहने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यदि हम धाम के बाहर हैं परंतु हमारी चेतना धाम में स्थित है तो धाम वास का भी लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के नियम जो हैं अलौकिक होते हैं। तो धाम के बारे में सुनना, धाम के बारे में बोलना अर्थात गुणगान करना, ये भी धाम की सेवा है। धाम का स्मरण करना, तो जब हम तीर्थ यात्रा में आते हैं तो अभी हमारे संसार के बारे में स्मरण नहीं करना चाहिए कि हमारे व्यवसाय में क्या हो रहा होगा, हमारे घर में क्या चल रहा होगा और दुनिया में क्या क्या चल रहा होगा। तो इन चीज़ों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, केवल धाम स्मरण इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण धाम के बारे में, ये पहले तीन पद्धतियां हैं सेवा के लिए। चौथे प्रकार की सेवा जो धाम की होती है वो कि हमारे मन में हमें इच्छा रखनी चाहिए कि कब मैं धाम में जा पाऊंगा। जैसे हम बेलगाम में या दिल्ली में, कलकत्ता में, अमेरिका में, लंदन में, जहां भी बैठे हों, यदि हमारे मन में ये तीव्र इच्छा हो रही है कि कब वो दिन आएगा जबकि मैं भगवान के धाम में, वृंदावन में, मायापुर, बद्रीनाथ आदि जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, तो ये भी धाम की सेवा मानी जाती है। साथ साथ जब हम धाम जा रहे होते हैं परंतु अभी तक धाम पहुंचे नहीं हुए होते हैं, लेकिन दूर से ही जब धाम को देखते हैं तो दूर से ही प्रणाम करना धाम को, ये भी एक सेवा है। जैसे जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं भुवनेश्वर से जब रास्ता है पुरी की ओर जाता है, तो रास्ते में एक जगह है जहाँ की पुरी अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर का शिखर दिखाई पड़ता है। तो ठीक जैसे ही शिखर दिखाई पड़ता है, तुरंत हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ मंदिर को और सारे जगन्नाथपुरी धाम को। वैसे देखा जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, केवल जगन्नाथपुरी शहर जितना बड़ा नहीं है, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि धाम का दर्शन दूर से करने पर भी हमें नमस्कार और प्रणाम करना चाहिए। और एक सेवा है धाम की कि धाम की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जब धाम के पास आए हैं तो धाम के पास 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 जाना चाहिए, धाम की ओर बढ़ते रहना चाहिए। साथ साथ में जब धाम पहुंचते हैं तो धाम की परिक्रमा करनी चाहिए। और गंगा है, गंगा जी की परिक्रमा तो नहीं हो सकती, परंतु गंगा के तट पे चलना और गंगा के तट पे विविध जो तीर्थ स्थान हैं उनमें जाना, ये सब गंगा जी की सेवा है या धाम की सेवा है। साथ साथ में धाम को अपना एकमात्र आश्रय मानना, ये भी धाम सेवा है। जैसे आज सुबह हम वर्णन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे दो आश्रय हैं, एक है मेरी माता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और दूसरी गंगा माता, गंगा माता गंगा। तो ऐसे हमें धाम का आश्रय या शरण ग्रहण करना चाहिए। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि धाम की में जब जाते हैं तो जब हम किसी प्रकार की मरम्मत करते हैं, समझ लीजिए कोई चीज़ बिगड़ गई है, कोई मंदिर है, कोई ऐसे स्थान है, कोई सुविधा है, उसको हम ठीक कर लेते हैं, धाम का को स्वच्छ करते हैं और धाम का सौंदर्यकरण के लिए कोई हम कदम उठाते हैं, तो ये भी धाम की सेवा है। जैसे गोवर्धन में आप सबने तो गोवर्धन की परिक्रमा की होगी, तो गोवर्धन की परिक्रमा जब पहले किया जाता था तो हमें याद है कितने सारे कांटे हुआ करते थे, बस दो कदम चले कि कांटे लग चुभते थे पैरों के तलवों में। नहीं, हमारे लिए हम पैर ही कहेंगे, हाँ हम चरण नहीं कहेंगे, अपने बारे में जब कहते हैं तो पैर ही कहते हैं, केवल भगवान के संदर्भ में चरण कमल। तो खैर, पैरों को हर दो कदम में कांटे चुभते रहते थे और कभी कभी एक साथ अनेक कांटे चुभते थे, तो इसलिए कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा में समय लग जाता था, क्योंकि रुकते रुकते कांटे निकालते निकालते काफी समय लग जाता था। परंतु कितने सारे भक्तों ने, न जाने वो कौन है, परंतु उनको अवश्य कृपा बहुत मिली होगी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके महीनों तक एक एक करके कांटे निकाल दिए। और फिर वहां गोवर्धन के पास में जो बालू है उसको फैला दिया, रेती, ताकि भक्तों को जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको चलने के लिए एक मुलायम कोई रास्ता मिल जाए। आजकल सब जगह वृंदावन आदि में ये काले रास्ते बना देते हैं सीमेंट आदि के, जिससे पैरों को चुभते हैं वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं। वैसे मिट्टी हो तो सबसे बढ़िया है। तो खैर, ये इन भक्तों ने न केवल ऐसे कांटों से मुक्त कर दिया है इस परिक्रमा के पथ को, इसका सौंदर्यकरण भी किया है। तरह तरह के जो पुण्यवान वृक्ष होते हैं, फल फूल आदि प्रदान करने वाले, उनको भी जगह जगह उन्होंने रोपित किया है। साथ साथ में धाम को स्वच्छ करने के लिए भी कई व्यवस्था उन्होंने की है। फिर भी हम देखते हैं कि जब गोवर्धन की परिक्रमा होती है, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए होते हैं। एक बार जब वृंदावन मंदिर की ओर से परिक्रमा निकले थे, तो वो कचरे का ढेर देख के परिक्रमा के पथ में इतना बुरा लगा कि हमने परिक्रमा ही रोक दी वहां पर, और कहा कि चलो अब एक घंटा हम लोग यहीं पे सफाई करेंगे। तो सारे 200-300 भक्त थे, देश विदेश से आए हुए, सब सफाई में लग गए और सबको इतना आनंद आया सफाई करते करते कि बस इसका वर्णन करना मुश्किल है। तो जब हम धाम की सेवा करते हैं इस तरह से, तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सारे पद्धतियां, इन सारे पद्धतियों से धाम की सेवा की जाती है। और जहां तक गंगा मैया जैसे धाम है जो कि नदी के रूप में है, वहां तो गंगा की सेवा स्नान से की जा सकती है और पूजा से, अर्चा से की जाती है। और अन्य जो धाम है उनकी भी आरती उतारी जा सकती है अवश्य, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। विशेष करके वृंदावन आदि जब में जाते हैं तो वहाँ के बालू में लौटते हैं। अक्रूर जी ने हम सबको सिखलाया है कि कैसे हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए, विशेष करके वृंदावन में। तो पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह देखे व्रज के रज में, तुरंत भाव विभोर होकर अपने रथ से उतरे और उस रज में लौटने लग गए। तो खैर ये सब भिन्न भिन्न तरीके हैं। तो गंगा ये भी एक धाम है, तो गंगा की सेवा भी अभी जिन पद्धतियों का वर्णन किया उन सब तरीकों से सेवा की जा सकती है। साथ साथ क्योंकि गंगा नदी है तो गंगा स्नान ये गंगा जी की सेवा करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम धाम में आते हैं तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छुट्टी भक्ति से ले रहे हैं, हम थोड़े केवल आनंद के लिए जाएंगे। आनंद तो होगा ही, आएगा ही, परंतु भावना होनी चाहिए कि भक्ति से छुट्टी लेने के लिए नहीं आए हैं, हम भक्ति को और तीव्र बनाने के लिए आए हैं। तो आइए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं गंगा स्नान के बारे में। परंतु गंगा जी में स्नान करने के विषय के पहले हम सामान्य रूप से स्नान की विषय में चर्चा करना चाहेंगे। आजकल विश्व भर में देखा जाए तो ये एक कार्य इतना लोकप्रिय नहीं है। वैसे विदेशों में हमने देखा है कि कई देश हैं जिसमें लोग हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं, क्योंकि ठंडी होती है। तो जर्मनी आदि में हम भक्तों से मिले हैं जो कहते हैं कि वहाँ के लोग कई बार हफ्ते में एक बार स्नान कर लेते हैं और फिर हफ्ते भर इतने वो तरह तरह के कृत्रिम रूप के गंध आदि, परफ्यूम्स आदि लगाते हैं, बस यही इनकी स्वच्छता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो अपने आप को समाज में बाहर प्रस्तुत करने के लिए योग्य समझता है, क्योंकि स्नान बड़ी बात हो जाती है कलयुग में। ये नहीं सोचता कि स्नान के अलावा कुछ तिलक भी धारण करना चाहिए और वैष्णव भक्त यज्ञ के चिन्ह भी होने चाहिए, जैसे कंठी माला आदि। तो खैर विशेष रूप से प्रातः स्नान के महात्म्य का वर्णन काफी विस्तार में शास्त्रों में दिया हुआ है। ये स्नान की जो क्रिया है वैदिक सभ्यता के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और बल्कि ये एक पावन और शुद्ध कार्य माना जाता है जिसका हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन से गहरा संबंध है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है जो कि झट से हम कुछ कर लिए चले आए, नहीं। जब स्नान करते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए करना चाहिए, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए स्नान करते समय। तो स्नान ये कोई साधारण कार्य नहीं होता है भक्तों के लिए और सभ्य व्यक्तियों के लिए जो आर्य होते हैं। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते थे वो ये है कि जो लोग सभ्य हैं उनको आर्य कहते हैं, जो सुसंस्कृत है और विशेष करके ऐसे लोगों को चाहिए कि वो प्रातः काल में उठें नींद से और तुरंत स्नान कर लें, ये अनिवार्य है, सिवाय उन लोगों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो बीमार हैं। अन्यथा सभी लोगों के लिए प्रातः काल में उठ के तुरंत स्नान करना अनिवार्य है। आजकल हम देखते हैं, अन्य देशों की बात तो दूर है, भारतवर्ष में भी सब पाश्चात्य देश की जो आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं उनको हम लेते हैं, जो अच्छे आदतें हैं वो उनको नहीं लेते हम। तो लोग आराम से उठेंगे, बेड टी पियेंगे, अपने बिस्तर में चाय आदि पियेंगे, फिर अपने दैनिक कार्य कुछ करेंगे, रसोई घर में पकाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, फिर समय मिले तो 11 बजे 12 बजे कुछ स्नान करेंगे। लेकिन विशेष करके जिनका जन्म भारत में हुआ है, ये बिल्कुल इन लोगों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि जो ऐसे उठ के प्रातः काल में स्नान नहीं करते हैं, ये पाप है। ऐसे कितने लोगों को पता है, भक्ति की बात तो दूर रही, पहले सभ्य बनना चाहिए। मध्व संप्रदाय के एक सन्यासी हैं, तो एक बार जब उनसे मिले थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने वो कह रहे थे कि भक्ति ये अमृत है, लेकिन ये तरल रूप है, द्रव रूप है इसका, लिक्विड फॉर्म अमृत। तो किसी तरल चीज को जैसे पानी आदि हो, उसको रखने के लिए कोई पात्र चाहिए। तो संस्कृति और सभ्यता ये वो पात्र है जिसमें भक्ति का अमृत रखा जा सकता है, और फिर बड़े अच्छे ढंग से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं और ये लंबे समय तक हम करते रह सकते हैं। परंतु यदि हमारा पात्र ठीक नहीं रहा, तो कहीं छेद हुआ, कहीं टूट गया, कहीं कुछ हुआ, तो अमृत निकलता रहेगा और हम बेचैन हो जाएंगे। तो इसलिए यद्यपि भक्ति इन साधारण भौतिक और सात्विक चीजों से परे है, भक्ति आध्यात्मिक है और ये चीजें अपने आप में भौतिक हैं। केवल स्नान करने से हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, फिर भी भक्ति के लिए ये बहुत लाभदायक और सहायक होते हैं। यदि हमने इनको भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार किया, आप में से जो अर्चा विग्रह की सेवा में रुचि रखते हैं, आप तो जानते ही होंगे कि पंचांग पूजा कहते हैं हमारे सेवा को, अर्चा मूर्ति की सेवा को, और उसमें जो अर्चा विग्रह की सेवा करने के पहले हम जो भी कुछ करते हैं वो भी अर्चा विग्रह की सेवा ही मानी जाती है। जैसे कि सुबह उठना, उठते उठते भगवान का स्मरण करना, अलग अलग भगवान के नामों का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना अपने बिस्तर में ही, अपने चटाई में, फिर तुरंत उठ के स्नान करना, ये स्नान की क्रिया भी अर्चा विग्रह की सेवा का एक अंग माना जाता है। क्योंकि हम स्वच्छ हो रहे हैं, किस लिए? ताकि हम आगे जाके भगवान की श्री मूर्ति की सेवा कर सकें। फिर भी यदि ये संस्कृति या सभ्यता को हम नहीं बनाए रखेंगे, तो दीर्घ काल सुदृढ़ रूप से भक्ति को बनाए रखना व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किंतु क्योंकि अधिकतर ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं की जाती है, तो पद्म पुराण में ऐसे बताया हुआ है कि जो ऐसे प्रातः काल में स्नान नहीं करता है वो वास्तव में नरक के योग्य है। और ऐसे प्रातःकालीन स्नान के बिना हम वैसे अशुद्ध रहते हैं, और जितने भी कार्य होते हैं जो कि किसी सभ्य व्यक्ति को करने चाहिए, उन कार्यों को करने के लिए हम योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि जप करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना इत्यादि। और यदि हम प्रातः काल कालीन स्नान किए बिना भोजन खाते हैं तो वो खाना ही होगा, क्योंकि जिस चीज का हम स्पर्श करते हैं तो वो चीज भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं अशुद्ध हैं। इसलिए हम जो ग्रहण करते हैं, मुंह में डालते हैं, वो भोजन नहीं कहलाता, वो भोजन से कुछ अलग ही है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। साथ साथ में जो ठंडे जल से स्नान करने की महिमा भी खूब है, वैसे इस बारे में मुझे कुछ कहना ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लज्जा जैसी लग रही है, क्योंकि मैं स्वयं ठंडे पानी से नहीं स्नान कर सकता, तो जिसका हम आचरण नहीं करते उसके बारे में प्रचार क्या करना चाहिए। खैर, जिनकी तबीयत साथ नहीं देती है तो शायद वो नहीं कर सकें ठंडे जल से स्नान, परंतु जिनकी तबीयत ठीक है यदि वो करें तो बहुत लाभदायक है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, इसलिए हम कह ही डालते हैं कि ठंडे जल से स्नान करने का लाभ क्या होता है। वैसे बताया जाता है कि बाहर से और अंदर से दोनों से हमें शुद्ध करता है। गर्म जल से जब हम स्नान करते हैं तो केवल हमारे स्थूल शरीर को वो स्वच्छ करता है, परंतु जब ठंडे जल से हम स्नान करते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो स्वच्छ होता ही है, साथ साथ में हमारा सूक्ष्म शरीर भी साफ हो जाता है। दूसरे शब्दों में, रात को जब हम सोते हैं न केवल शारीरिक रूप से हम मलिन हो जाते हैं, परंतु हमारे मन भी दूषित हो जाता है। कभी कभी तरह तरह के सपने आते हैं और उनका प्रभाव मन में रहता है, और सुबह सुबह उठते उठते रात भर की के तमोगुण का प्रभाव भी रहता है, एक प्रकार का आलसीपन इत्यादि। तो ये सारे चीजें मिट जाती हैं ठंडे जल के स्नान से। और वैसे ठंडे जल से स्नान करने से शरीर को शक्ति मिलती है, दीर्घ आयु होती है, तेज बढ़ जाता है, शुद्धता बढ़ती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, मन की शांति होती है, मन में जितने भी बुरी विचार हैं वो भी चले जाते हैं। यदि हम शोक ग्रस्त हैं किसी कारण से, शोक भी मिट जाता है। और हाँ, जब ठंडी के समय ठंडे जल से स्नान करते हैं तो कृष्ण को खूब याद करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। तो तरह तरह के हम लोग चीजें करते हैं, हाय हाय, ओह ओह, अय्या, जो भी कहते हैं, अय्यो। उसके अलावा हम भगवान का नाम ले लें, जब तकलीफ होती है तो कृष्ण कृष्ण कुछ कह दें, तो इसे शुद्धिकरण भी होगा। और आपको तो पता है कि हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। श्रीमद् भागवत में हमारे शरीर की तुलना एक ऐसे शहर से की गई है कि जिसके 9 द्वार हैं, जैसे कि हमारे मुख, नसिकाएं, आंखें, कान, नाभि इत्यादि। तो जब हम सोते हैं तो हमारे 9 द्वार जो हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर ठंडे पानी से स्नान करने से ये 9 द्वार, 9 के 9 पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे बताया जाता है कि प्रातः स्नान का लाभ न केवल शारीरिक स्तर पर होता है, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। तो ये रही बात प्रातः स्नान की। और स्नान वैसे देखा जाए तो अनेक प्रकार के होते हैं। पुराणों में वर्णन है कि 7 प्रकार के स्नान होते हैं। अभी आप पूछेंगे भाई एक प्रकार का बहुत हो गया हमारे लिए, अभी सात प्रकार के एक एक बार का स्नान करते करते कितना समय जाता है। तो खैर, पहले प्रकार का स्नान है वारुण स्नान, अर्थात जो हम रोज करते हैं जल से, वारुण वारुण स्नान। जल से जब हम स्नान करते हैं तो उसे वारुण स्नान कहते हैं। दूसरे प्रकार का स्नान है आग्नेय स्नान, जब यज्ञ करके यज्ञ का जो भस्म होता है जो, तो उसका हम लेप लगाते हैं शरीर को, तो फिर वो आग्नेय स्नान कहा, आग्नेय स्नान कहा जाता है। फिर तीसरा है वायव्य स्नान, जब गाय चलते हैं और उनके खुरों से धूल उड़ती है वो बहुत पावन मानी जाती है, ये शुद्ध है, इंसान को शुद्ध करती है ये धूली, इसलिए गोधूली ये आपने शब्द सुना होगा। ये बहुत पावन समय माना जाता है क्योंकि गाय के खुरों से उड़ते हैं धूल, वो धूल हमारे शरीर पे आते हैं, तो वो भी एक प्रकार का स्नान होता है जिसे वायव्य स्नान कहते हैं। उसके बाद है दिव्य स्नान, जब सूरज के होते हुए, जब बादल सूरज को ढक नहीं रहे होते हैं और उस समय जब बारिश होती है, तो ऐसे वर्षा में जब हम भीग जाते हैं तो इसे भी स्नान कहते हैं, ये दिव्य स्नान है। फिर पांचवा है मंत्र, मंत्र स्नान। मंत्र स्नान अर्थात जब हम अलग अलग मंत्रों के उच्चारण करते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा जल हमारे ऊपर हम छिड़क देते हैं। फिर मानसिक स्नान है, मानसिक स्नान है जब हम भगवान कृष्ण या विष्णु के नामों का या गुणों का उच्चारण करते रहते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, विग्रह की सेवा करने के पहले हम अवश्य एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिः, कि चाहे हम किसी स्वच्छ स्थान से गुजर रहे हों, गुजर के आए हों, या किसी अस्वच्छ स्थान से, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से क्यों न आए हों, यदि हम पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो अंदर से भी और बाहर से भी हम शुद्ध हैं। तो देश काल के अनुसार, समय आदि के अनुसार हम अलग अलग स्नान कर सकते हैं, विशेष करके जब हम बीमार होते हैं या जल की व्यवस्था नहीं होती है, तो वैसे मंत्र स्नान आदि से हम काम चला सकते हैं। परंतु हाँ, इस मंत्र स्नान का गलत उपयोग नहीं उठाना चाहिए कि चलो अभी मंत्र स्नान हमने कर लिया ना, शास्त्रों में लिखा है, तो वारुण स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये तरह तरह के स्नान हैं, और ये सारे जितने भी प्रकार के स्नान हैं उन सब से हमारा शुद्धिकरण होता है। अब जहाँ तक वारुण स्नान का प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दैनिक कार्य है हमारे लिए, ये वारुण स्नान का वर्गीकरण किया जाता है जल के स्रोत के अनुसार, कि कहाँ से जल प्राप्त होता है हमारे स्नान के लिए, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा जल सर्वश्रेष्ठ है। किस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ? स्वच्छ कराने के दृष्टिकोण से, हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को भी। तो पूरी तरह से यदि हमें स्वच्छ होना है तो एक क्रम है जो कि शास्त्र में दिया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जो जल होता है वो स्नान करने के लिए, वो है गंगा या यमुना का जल। नंबर पहला नंबर, यदि गंगा जल स्नान करने के लिए मिले या यमुना का जल स्नान करने के लिए मिले तो बस इससे कोई श्रेष्ठ वारुण स्नान नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर पर है कोई और पवित्र नदी, जैसे कि यमुना, गंगा यमुना तो आ ही गई, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, चंद्रभागा, महानदी, शोण, गंडकी, कौशिकी, ऐसे सरयू, ऐसे कितने सारे पवित्र नदियां हैं, तो इनमें भी हम स्नान कर सकते हैं। यदि ऐसे भी कोई पवित्र नदी हमारे घर के पास या स्थान के पास नहीं है, तो हम किसी तीर्थ में जाके स्नान कर सकते हैं। तीर्थों में समुद्र भी आ जाता है, जैसे जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के साथ के शरीर के साथ उनको नहलाया, उनके तिरुभाव के बाद उन्होंने कहा कि आज से ये जगन्नाथपुरी के पास जो समुद्र है ये तीर्थ स्थान बन गया है। और वैसे भी प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में एक जगह श्रीमद् भागवतम में कि यदि हम गंगा या यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो हम समुद्र में भी स्नान करें तो ये भी एक बहुत अच्छा स्नान माना जाता है। आगे चल के यदि ऐसे तीर्थ स्थान भी उपलब्ध न हो तो हम किसी भी ऐसे नदी में स्नान कर सकते हैं जो कि सीधे समुद्र की ओर जाता है और समुद्र में मिल जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी नदी नहीं जो कि दूसरे नदी को जाके मिलती है, परंतु जो सीधे समुद्र में जाती है। यदि ऐसी कोई नदी न हो तो कोई भी नदी चल जाएगी और यदि कोई नदी ही न हो घर के पास तो फिर कोई धारा बह रही हो तो वो ही सही, वो भी न हो तो कोई कुंड हो तो कुंड में स्नान करें, कुंड भी न हो कोई सरोवर हो पास में तो उसमें स्नान करें, सरोवर न हो तो कोई झरना हो जो पहाड़ों से आ रही है तो उसमें स्नान करें, झरना भी न हो तो कुएं के जल से हम स्नान कर सकते हैं। कुएं में से पानी निकालकर उससे स्नान करना बड़ा अच्छा स्नान माना जाता है और हम तंदुरुस्त भी रहते हैं। किसी जगह जाके कसरत करने के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो रोज पानी खींचते खींचते सब कुछ ठीक ठाक रह जाता है। और यदि कोई कुआं भी उपलब्ध नहीं है तो किसी भी साफ जल से स्नान कर सकते हैं। तो ये 11वें नंबर का जो स्नान है ये अधिकतर हम लोग करते हैं। कभी कभी जब हम धाम में आते हैं तो गंगा आदि में स्नान करने का लाभ मिलता है। देखिए वैसे भारतवर्ष की सभ्यता ऐसी है कि निवास स्थान ऐसे जगहों में बनाए जाते थे जहाँ की पास में गंगा हो, यमुना हो, कोई पवित्र नदी हो या कोई कुंड हो, सरोवर हो, ताकि जलाशय यदि पास में हो तो उसका लाभ उठाया जाए। तो ऐसे अनेक इतिहास में यदि देखा जाए तो अधिकतर सारे जो शहर आदि हैं या बड़े बड़े गांव हैं वो ऐसे ही नदी के तट पर ही हुए हैं। और ये केवल कृषि या खेती के लिए नहीं है, परंतु अपने निजी कार्यों के लिए, जैसे कि स्नान पान आदि के लिए भी छोटे छोटे गांव में भी अलग अलग कुंड हुआ करते थे, छोटे छोटे सरोवर। ओडिशा में एक जगह एक भक्त बता रहे थे कि उनके गांव में आज भी ऐसे है, परंतु ये प्रथा अब धीरे धीरे से खत्म होती जा रही है, कि उनके गांव में 3-4 कुंड हैं। एक कुंड है केवल गांव के मंदिर के लिए इस्तेमाल करने के लिए पानी, उसमें से गांव के जितने भी लोग हैं वो अपने निजी कार्य कभी नहीं करेंगे और वहां कोई पुलिस आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे गांव के लोग इसको मानते हैं। उस कुंड का जल अपने लिए नहीं लेते हैं, केवल भगवान की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए उस कुंड से जल लेते हैं। दूसरा कुंड होता है केवल स्नान के लिए, और कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते वहां, केवल स्नान, वो जल लेते हैं स्नान के लिए। और एक कोई कुंड होता है कपड़े आदि धोने के लिए। और ऐसे तीन चार कुंड है अलग अलग चीजों के लिए, एक पशुओं के लिए है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह सब कुछ चलता है। कितनी बार हम देखते हैं सफर करते करते कि किसी नदी ने, नदी के अंदर किसी ट्रक वाले ने अपने ट्रक को लगा दिया है और वो ट्रक को धो रहा है, कोई अपनी मोटरसाइकिल धो रहा है, कोई अपनी गाड़ी धो रहा है, ताकि सारी जो गंदगी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये है वो है, सब नदी में चले जाए। वैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पवित्र नदियों को, खास करके गंगा यमुना आदि, इनको दूषित करता है तो वो नरक जाने के लिए अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अब नदियों के जल के भीतर मलमूत्र आदि त्याग करना, या हमारे थूक है, बलगम है, आंसू है, या शरीर से जो भी निकलने वाली वस्तु है, उसको यदि हम जल में डालें तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यहां तक कि नदी के बिल्कुल तट पे भी यदि हम ऐसे कार्य करें तो यदि ये भी एक बहुत दंडनीय कार्य है। वैसे महाभारत में कहा गया है कि किसी भी जल में मल त्याग करना ये ठीक नहीं है। लेकिन आजकल तो बस शौचालय में जल में ही तो सब होता है। मलमूत्र दोनों को जल में ही त्यागते हैं, परंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार ये ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हमारी सभ्यता इतनी दूर आ चुकी है प्राचीन वैदिक सभ्यता के दृष्टि के तुलना में, कि अब क्या किया जा सकता है। खैर जो है सो है, लेकिन भक्ति तो अच्छी तरह से करें, जितना हो सके उतना हम शुद्ध रहें और अच्छी तरह से भक्ति करें। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि गृहस्थ और वानप्रस्थ जो होते हैं उनको दिन में दो बार स्नान करना चाहिए, ब्रह्मचारी को एक बार, सन्यासी को तीन बार। ऐसे दैनिक स्नान का वर्णन है। और जब ये संभव नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी कारणवश हम बीमार हैं या पानी उपलब्ध नहीं है, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब जल मिल जाता है तो अवश्य स्नान कर लेना चाहिए। और विशेष करके जब कोई अशौच अवस्था है, जो अशुद्ध अवस्था में हम हैं, जैसे कि हम स्मशान से लौटे हैं या हमारे घर में किसी की अभी मृत्यु हुई है इत्यादि, तो ऐसे समय में भी हमें गंगा आदि में जाके स्नान कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में ऐसे प्राचीन प्रथा है कि जब घर में किसी का देहांत होता है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर गंगा या यमुना में या किसी पवित्र नदी में जाते हैं और स्नान करते हैं, और फिर उस नदी का जल ही उस बीते हुए उनके परिवार के सदस्य के लिए, के भलाई के लिए अर्पण करते हैं। जैसे कि पांडवों ने किया था, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में है कि युद्ध के बाद पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर चल पड़े गंगा की ओर, और गंगा में फिर उन्होंने तर्पण आदि अर्पण किए अपने जो भी बीते हुए, जो उनके संबंधी थे, सब के लिए। तो खैर ऐसे स्नान की विधि, स्नान के जो आदेश है वो बहुत सख्त हैं कि स्नान करना ही चाहिए, और यदि किसी को गंगा यमुना में स्नान करने का अवसर मिले तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जहां तक गंगा में स्नान करने की विधियों का प्रश्न है, ऐसे कहा जाना चाहिए कि ऐसे कोई सख्त नियम नहीं है, क्योंकि गंगा हमारी माता है, बहुत कृपालु है, हमारा उद्धार करने के लिए बहुत इच्छुक है। केवल जो अभी अभी हम जिन नियमों का वर्णन कर चुके हैं, मर्यादा का पालन वो है, वो तो करना चाहिए, परंतु इनके अतिरिक्त जैसे तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करना इत्यादि, यदि हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमें जो भागवत के जो महत्वपूर्ण स्तोत्र हैं या महत्वपूर्ण जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जैसे ब्रह्म संहिता, शिक्षाष्टकम आदि, वो हमें कंठस्थ कर लेने चाहिए और उनको बार बार उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि जब मृत्यु का समय आएगा तो हम उस समय इन मंत्रों को या इन स्तुतियों को बोल पाएंगे। प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं उस तात्पर्य में, जबकि गजेंद्र बहुत पीड़ित अवस्था में भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की स्तुतियां याद आ गईं भगवान की कृपा से, तो यदि हम भी ऐसे आजीवन प्रयत्न करेंगे स्तुतियों को पाठ करने का, तो जब आवश्यकता की घड़ी आएगी, संकट काल में, हम तुरंत भगवान ऐसे इन मंत्रों का उच्चारण कर पाएंगे, भगवान को पुकार पाएंगे निस्सहाय होकर, और भगवान हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। और यदि प्रभुपाद कहते हैं कि ये मंत्र हम याद नहीं कर सकते या किसी कारणवश याद नहीं है, तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना तो है ही, और वो प्रार्थना कौन सी है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खैर, तो ठीक उसी प्रकार से गंगा जी में जब हम स्नान करने जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं कि हमें गंगा जी को जाके पहले नमस्कार करके, प्रणाम करके अनुमति लेनी चाहिए स्नान करने के लिए, श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए भक्ति भाव से। गंगा जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आसक्त बनाइए, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत कराइए, हमारे हृदय के अनर्थों का को आप नष्ट करिए। और यदि हम कोई मंत्रों को याद भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये विषय इतने हम विस्तार में ले रहे हैं तो क्यों ना मंत्रों का उच्चारण भी किया जाए आज। तो गंगा जी में स्नान करते हैं तो जल में प्रविष्ट होने के पहले कई भक्त क्षमा याचना करते हैं इस मंत्र के द्वारा। क्षमा याचना किसके लिए? क्योंकि हमारे पैर हम गंगा जी में डालने वाले हैं, नहीं तो कैसे स्नान किया जा सकता। गंगा जी तो बहुत पवित्र हैं, किसी पवित्र वस्तु पे हम पैर नहीं रखते हैं, लेकिन गंगा जी में स्नान करते समय तो हमारे पैर हम डालते ही हैं, इसलिए हम क्षमा याचना करते हैं। वैसे शास्त्र में बताया गया है कि जो सभ्य व्यक्ति होता है वो अपने बिस्तर से उठ के जब जमीन पर भी पैर रखता है तब भी पृथ्वी माता के चरणों में क्षमा याचना करता है कि हे पृथ्वी माते, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, मेरे आप तो स्वयं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप तो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, तो मैं नमन करता हूं आपको, तो आप कृपया क्षमा कर दीजिए। तो उसी तरह हम गंगा जी में प्रवेश करने के पहले क्षमा याचना करते हैं गंगा जी से, ये कहकर, ओम गंगे देवी जगन माता,
ओम गंगे देवी जगन माता,
पदाभ्याम सलिले तव,
पदाभ्याम सलिले तव,
स्पृशामित्यपराधं मे प्रसन्ना क्षन्तुम् अर्हसि। ओम गंगे देवी जगन माता। हे जगत माता, हे गंगे देवी, पदाभ्याम सलिले तव स्पृशामी, मैं मेरे पैरों से आपके जल का स्पर्श करने जा रहा हूँ। इति अपराधम में, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा है, इसलिए प्रसन्ना क्षन्तुम अर्हसी, तो आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें, आप मुझे क्षमा कर दीजिए इस बड़े अपराध के लिए। तो गंगा जी में प्रवेश करने के पहले ये इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, और फिर पानी के अंदर प्रवेश करके जब हम स्नान कर रहे होते हैं तो गंगा जी से हम शुद्धिकरण की याचना करते हैं। विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवे विष्णु देवता, पाहिनस्त्वेन सस्तस्माद् अजन्म मरणांतिकात्। कि हे विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न होने वाली गंगा देवी, आप तो वैष्णवी हैं, तो कृपया मुझे समस्त पापों से, समस्त अपराधों से, समस्त अनर्थों से आप शुद्ध कर दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। वैसे और एक मंत्र है जो हमारे संस्था के भक्तों को अच्छी तरह से पता है, जो कि आचमन तैयार करते हुए हम प्रयोग करते हैं, तो उस मंत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं जब गंगा में स्नान करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो हम सात पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं, समस्त नदियों को, पवित्र नदियों को बुलाते हैं इस आचमन पात्र में, तो इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और वैसे कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो हम भूलेंगे नहीं, उसका उच्चारण हम कर सकते हैं। ऐसे स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि कोई गंगा जी में स्नान नहीं कर सकता किसी कारणवश, तो उसे गंगा सहस्र नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि ये कहते हैं कि ये बहुत गोपनीय चीज है, जो श्रद्धावान नहीं है ऐसे लोगों को ये बताना नहीं चाहिए, कि ये केवल जो श्रद्धावान लोग हैं इनके लिए ये एक रहस्यमय बात है, कि जो गंगा में स्नान नहीं कर सकते ऐसे गंगा जी के पवित्र नामों का उच्चारण अवश्य कर सकते हैं। तो खैर, इस तरह से गंगा स्नान के बारे में थोड़ी बातें हमने बताई हैं। अब आइए सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में बहुत सुंदर सुंदर बातें गंगा स्नान के बारे में बताई हुई हैं, तो उनको संक्षेप में हम आज बताना चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा जी की सेवा स्नान के द्वारा प्रमुखतः की जाती है, और गंगा जी में स्नान करने से हम अंदर और बाहर भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों से पूर्णतया हम शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध क्यों होते हैं गंगा जी के जल में स्नान करने से? क्योंकि गंगा जी का जल चरणामृत है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए इस भौतिक सृष्टि में ये जल आया है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के की जो शक्ति है, वही शक्ति उनके चरण कमलों से स्पर्श करने वाले जल में भी होती है। इसलिए गंगा जल का ये लाभ है कि हम भगवान श्री कृष्ण के मानो चरण कमलों का ही स्पर्श कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे पूर्णतया जब शुद्धिकरण होता है अंदर और बाहर, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोण से, ये एक सिद्ध सत्य है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, तर्क की बात नहीं है, वाद की बात नहीं है। इस बात ये एक सिद्ध चीज है, साबित हुआ है ये। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में लाखों लाखों लोग ऐसे पवित्र नदियों के तट में रहते हैं और इस प्रकार से नित्य रूप से स्नान करके भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अपना शुद्धिकरण कराते हैं। अभी हम अलग अलग तात्पर्यों से जो प्रभुपाद जी ने कहा है हमको इकट्ठे लाके हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से और अंदर से भी गंगा जल हमें साफ कराते हैं। तो बाहर से कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं गंगा जल में स्नान करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग आदि नहीं होते हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति गंगा जी में काफी है, तो बीमारियां जल्दी से नहीं होती हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग नित्य नियम से आजीवन दिन में एक या दो बार कम से कम गंगा जी में स्नान करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। और फिर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक ऐसे सम्माननीय ब्राह्मण का उल्लेख करते हैं जो कि कलकत्ता में रहा करते थे और वो आजीवन गंगा जी में स्नान करते थे प्रतिदिन। कभी भी उन्होंने किसी डॉक्टर की दवाई नहीं ली। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी उनको थोड़ी बहुत बीमारी हो भी जाती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन जब भी होती थी तो दवाइयां नहीं लेते थे, केवल गंगा जल का पान करते थे और थोड़े समय में ठीक हो जाते थे। अभी हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं बता रहे हैं कि डॉक्टर के पास अभी आप मत जाइए कभी, परंतु हम बताना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि गंगा जल की शक्ति कितनी है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं और ये एक ऐसी बात है जिसका अनुभव लाखों लाखों भारतवासियों को है और हमें भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने बारे में कहते हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी भी तो कलकत्ता में रहा करते थे। और फिर वो कहते हैं कि कलकत्ता में जो गंगा है और अन्य स्थानों में भी, वहां पर बहुत गंदी चीजें कभी कभी डाली जाती हैं, फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक शास्त्रज्ञ व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो इन गंदी चीजों की परवाह नहीं करता है। इन गंदी चीजों को अलग करके फिर वो डुबकी लगा के बाहर आता ही है। चाहे कोई प्रदूषण हो भी जाए जल में, फिर भी गंगा जल का जो दिव्य गुण है उसमें कोई घटन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम प्रदूषण करते रहें कि गंगा जल दिव्य है। नहीं, दिव्य है इसलिए इस जल का इतना देखभाल करना चाहिए, इसको इतना स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये पूजनीय है। वैसे शास्त्र में ये भी श्लोक है कि गुरु को कोई साधारण व्यक्ति समझना, एक भगवान की श्री मूर्ति को पत्थर की प्रतिमा समझना, वैष्णव को किसी जाति भेद के दृष्टि से देखना कि ये इस जाति का है उस जाति का है, और गंगा जी के जल को साधारण जल समझना, ये नारकीय बुद्धि है, ये अच्छी बात नहीं है। और प्रभुपाद जी उपदेश अमृत में भी बताते हैं कि गंगा जल को कभी भी अशुद्ध हमें नहीं मानना चाहिए, चाहे वो बाह्य दृष्टि से भौतिक दृष्टि से प्रदूषित क्यों न हो जाए, गंगा जल की शक्ति वैसे की वैसे ही रहती है। तो इसलिए बाह्य दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य आदि को ठीक ठाक रखती है, गंगा जी रखती हैं, यदि हम समय समय उनके जल में स्नान करते रहें तो। और अंदर से कैसे गंगा जल हमें पवित्र करता है, वैसे शास्त्रों में कई जगह बताया हुआ है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे ढेर सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसका संक्षेप में वर्णन आज हम सुबह भी कर रहे थे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अखिल जगत अघमाला अघमल अपहा उपस्पृशम न अमला। अखिल जगत, समस्त जगत के अघमल पाप रूपी मल को अपहा ये गंगा जल छीन लेता है, उपस्पर्शम स्पर्श करने के कारण। और गंगा जी अमला रहती हैं, गंगा जी दूषित नहीं होती हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, यद्यपि वो सबका पाप ग्रहण कर लेती हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका एक उदाहरण है, सगर महाराज के जो पुत्र थे 60,000 पुत्र, इस लीला का वर्णन हम आगे चल के आने वाले किसी एक दिन में करेंगे। कपिल मुनि का अपराध उन्होंने किया, कपिल मुनि ने अपने आंखें खोल दी और ये 60,000 पुत्र अपने अपराध के बल पर ही भस्म होकर गिर पड़े। तो अंततः उनके वंशज भगीरथ महाराज ने गंगा देवी को नीचे पृथ्वी लोक पर ले आकर उनका उद्धार कराया। और जैसे ही गंगा जल ने उनके शरीर के राख को या भस्म को, अस्थियों को स्पर्श किया तो उनको तुरंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में ये बहुत पुरानी प्रथा है कि अस्थियों का विसर्जन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में किया जाता है, ताकि जिनके अस्थियों को हम अभी पानी में डाल रहे हैं उनको लाभ वो मिल जाता है। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, देखिए किसी भी अन्य सभ्यता में नहीं है। अन्य पद्धतियों में क्या होता है, वो केवल दफना डालते हैं शरीर को, वहां भूल जाते हैं, परंतु शरीर के साथ ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद भी अस्थियों को ले जाया जाता है गंगा में, यमुना में उनका विसर्जन किया जाता है, ताकि बीते हुए आत्मा को अच्छी गति मिले। तो ऐसे कितना सूक्ष्म विज्ञान है ये। तो गंगा जी में स्नान करने से कितना लाभ होगा, जब किसी के अस्थियों को भी का विसर्जन करने से इतना लाभ होता है, तो हम स्वयं जाके गंगा जी में स्नान करेंगे तो कितना लाभ होगा, ये सोचने की बात है। इसलिए गंगा जी को पतित पावनी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में के 9वें अध्याय में कहा गया है, न हि तत् परमाश्चर्यम् स्वर्धून्य यद इहोदितम् अनंत चरणां भोज प्रसूताय भवच्छिदः। वैसे कहा जाता है, क्योंकि गंगा जी भगवान श्री अनंत अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करके प्रकट होती हैं इस दुनिया में, इस भौतिक सृष्टि में, इसलिए वो हमारे भव बंधन को काट सकती हैं। भवच्छिदः, ये गंगा जी की क्षमता है। वैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य भागवत में कि यदि हम किसी ऐसे अपराधी को देखते हैं जो हरि नाम के प्रति अपराध करता है, तो हमें कपड़ों सहित गंगा जी में जाकर डुबकी मारनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा अपराध है कि कोई भगवान के नामों के प्रति कुछ भला बुरा कह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें मिलना ही नहीं चाहिए। वैसे गंगा जी में स्नान करने के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं, विशेष करके जब उत्सव होते हैं, कोई विशेष कोई घटनाएं होती हैं, तो ऐसी श्रद्धा बस कहीं और देखी नहीं जाती। जैसे कुंभ मेला में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और ये तो विशेष करके जाड़े के मौसम में ही होता है, और होता है तो प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में, जहाँ काफ़ी ठंडी रहती है, फिर भी लाखों लाखों लोग आके सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प। और आप देखेंगे तो इनमें से अधिकतर लोग बहुत गरीब गरीब लोग होते हैं, गांव से, इधर उधर देश के अलग अलग गांव से आते हैं, पैसे भी इनके पास नहीं होते हैं, बड़े कठिनाई से किसी न किसी तरह ठंडी को सहन करते करते रेलगाड़ी में इधर उधर बैठ के चले आते हैं। वहां पर भी रहने की कोई अच्छी व्यवस्था उनके लिए नहीं होती है, ठंड में बेचारे रह जाते हैं, फिर भी जाके स्नान करते हैं गंगा जी के जल में। कितने भाग्यवान लोग हैं, अपूर्व, ऐसे किसी भी देश में नहीं देखा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भारतवर्ष के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इतने सारे तीर्थ स्थान यहाँ हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इतने सारे तीर्थ स्थान और पवित्र नदियां हैं जिनमें जाके हम स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय भी लोग गंगा सागर जाते हैं बंगाल में, जहाँ की गंगा समुद्र से मिलती हैं, वहाँ भी लाखों की संख्या में जाके लोग स्नान करते हैं, इस आशा से कि मैं भव बंधन से मुक्त हो जाऊं, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। वैसे 3-4 दिन पहले ही सोमवती अमावस्या थी, जिस दिन पर हम हरिद्वार पहुंचे थे, और या उसके हाँ उसी दिन थी सोमवती अमावस्या, और इस दिन गंगा में स्नान करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये एक कारण था कि हमें जो आश्रम वगैरह में रहने की व्यवस्था की गई वो हरिद्वार से थोड़े बाहर की ओर था, क्योंकि शहर के अंदर करते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती वहाँ। हरि की पौड़ी जो है, गंगा का तट है वहाँ, हो सकता है तो हम जाएंगे, जब हम लौटते वक्त हरिद्वार होकर जाएंगे तो हरि की पौड़ी में जाएंगे, तो वहाँ लाखों लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तो गंगा मैया का चमत्कार देखिए कैसे लोगों को आकर्षित करती है वो, और गंगा जी में क्या ऐसे जादू है, क्या दिव्य गुण है कि इतने लोग, लाखों लाखों लोग ऐसी कड़ी तपस्या करके, इतना कष्ट सहन करके उनके जल में स्नान करने के लिए आते हैं। तो खैर, ये एक अहो सौभाग्य है, ये विशेष एक भेंट भगवान की है मनुष्य समाज के लिए, तो इसका लाभ हमें कभी कभी उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में थोड़ी बहुत तो तपस्या करनी चाहिए। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में जिस प्रकार की तपस्या हुआ करती थी वो तो कलयुग के लोगों के लिए संभव बिल्कुल नहीं है। फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं तो थोड़ी तो तपस्या करनी चाहिए। जैसे कि हम 4 नियमों का पालन करते हैं, ये तपस्या है, उसी तरह से हमें गंगा और यमुना जैसे नदियों में भी स्नान करना चाहिए। और यदि गंगा यमुना पास में न हो तो हम समुद्र में भी स्नान कर हम कर सकते हैं, और ये तपस्या का एक अंग है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ने अभी अभी 2 बड़े शाखाएं या केंद्र खोले हैं, एक वृंदावन में और एक मायापुर में। वृंदावन से में यमुना बहती है और मायापुर में गंगा देवी बहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को चाहिए कि वो इन दो केंद्रों का लाभ उठाएं, गंगा और यमुना में स्नान करें, हरे कृष्ण महामंत्र का भक्ति भाव से उच्चारण करें और भगवत धाम चले जाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। कितना आसान रास्ता दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के धाम में जाने के लिए। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने गंगा जी को फैला दिया है, न केवल भारतवर्ष में परंतु सारे ब्रह्मांड में, ताकि केवल इस नदी में स्नान करके लोग अपने अनादि काल से इकट्ठे हुए पाप राशि को नष्ट कर सकें और शुद्ध हो जाएं। साथ साथ केवल पापों को नष्ट करना यही एकमात्र लाभ नहीं है, नहीं ये पर्याप्त है अपने आप में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने का और एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना हमारे हृदय में जागृत होती है धीरे धीरे, शनै शनै। इसके लिए अनेक जन्म भी लग सकते हैं और आज हम भक्त हैं, भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व न जाने कितने जन्मों में हमने न जाने कितनी बार गंगा में स्नान किया होगा, न जाने कितनी बार हमने भक्तों का संग किया होगा, भक्तों से कुछ नाम सुना होगा, हरि नाम कुछ प्रसाद ग्रहण किया होगा। इसलिए तो हम इतने भाग्यशाली आज हैं कि हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर पा रहे हैं। तो केवल गंगा में स्नान करने से, नियमित रूप से हमारे हृदय में जो सुप्त एक भगवत भावना है उसको पुनः हम जागृत कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे धरती में अनेक पावन नदियां हैं जिनमें स्नान करके ऐसे भगवत भावना उत्पन्न हो सकती है। विशेष करके प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांच पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। इनमें से गंगा सबसे महत्वपूर्ण है और आगे चल के जितने भी और पवित्र नदियां हैं और भी हैं, जैसे कि सरस्वती इत्यादि, इन सब को मिलाकर गंगा जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आदि शंकराचार्य ने गंगा जी की स्तुति की है एक श्लोक में और कहा है कि जो भगवद गीता का पाठ थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा गंगा जल का पान करता है, उसे यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो इस श्लोक को हम आज सुबह कह रहे थे, आपको याद होगा, किसी को वो श्लोक याद है? हाँ बोलो। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, सकृत अपि एवं मुरारी समर्चा। हाँ, बिना यमे न चर्चा, कि यमराज से हमें कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम थोड़ा बहुत भगवत गीता का पाठ करेंगे, गंगा जल का पान करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तो हालांकि प्रभुपाद जी इस श्लोक को कहते नहीं है, संस्कृत श्लोक को नहीं कह रहे हैं तात्पर्य में, परंतु उसका अर्थ समझाते हैं। और वो आगे प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन पवित्र नदियों के तट पर निवास करते हैं वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं। गंगा जी का जल का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा में भी होता है। जब अद्वैत आचार्य देख रहे थे कि सारी दुनिया में परिस्थिति बहुत विकट है, जो वेदों को तथाकथित वेदों के पालन करने वाले लोग हैं वो भी केवल कर्मकांड और ज्ञानकांड के ही अधीन थे, विरला ही कोई ऐसे व्यक्ति मिलता था जो कृष्ण भक्ति में रुचि रखता था। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि केवल स्वयं श्री कृष्ण यदि यहाँ आए तब ही कुछ इस समस्या का हल निकल सकता है। तो फिर वो तुलसी के दल और मंजरी को लेकर, गंगा जल को साथ में लेकर अपने शालिग्राम शिला को अर्पण करते जा रहे थे, रोज करते थे और जोर जोर से भगवान को पुकारते थे ताकि भगवान प्रकट हो जाएं। और आखिर अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए ही। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणिते स्वमात्मानम् भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी दल को लेकर, जलस्य चुलुकेन वा, गंगा जल थोड़े बहुत थोड़े बूंद मुट्ठी में रख लिए, हथेली में रख लिए और ये हमने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर लिए, तो ऐसे समर्पण से हम भगवान श्री कृष्ण को खरीद सकते हैं, खरीदे जाते हैं भगवान भक्तों के द्वारा, भक्तेभ्यः, और कोई खरीद नहीं सकता भगवान को, केवल भगवान के भक्त ही उनको खरीद सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक गुण है कि वो भक्तवत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो खैर, ऐसे गंगा जल इतना पवित्र है कि वैसे अर्चा विग्रह की सेवा में भी हम प्रयोग करते हैं। तो हमने अब चर्चा कर ली है कि किस तरह से गंगा जी में स्नान करना चाहिए, परंतु किस तरह से गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए उसका भी तो थोड़ा उल्लेख होना आवश्यक है। संक्षेप में तो हम बता चुके हैं कि प्रदूषण आदि गंगा और गंगा के तट में अवश्य नहीं करना चाहिए। साथ साथ में जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं पापों को धुलाने के लिए, परंतु हमारे मन में कोई संकल्प नहीं होता है कि बाहर निकलने के बाद हम पाप करना बंद करें, तब वो हाथी के स्नान के बराबर होता है। इसलिए इस दृष्टि से स्नान करना ये वर्जित है, इसकी चर्चा हम आज सुबह कर चुके हैं। दूसरी बात, यद्यपि हम गंगा में भी स्नान कर रहे हों परंतु हमारी भावना ठीक न हो तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। और इसके लिए उदाहरण है नलकूवर और मणिग्रीव का। वो स्वर्गीय मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, जबकि नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो नारद मुनि का सम्मान नहीं किया उन्होंने, वो कोई अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे उस जलाशय में, उस नदी में, और ये बिल्कुल अनुचित था। नारद मुनि के प्रति उनका अपराध हो गया। नारद मुनि समझ गए कि अपने ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा आदि के कारण ये उन्मत्त हो गए हैं, अभी इनके मान का भंग करना चाहिए। तो नारद मुनि ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की, उनको श्राप दे दिया, क्योंकि नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, तो नारद मुनि का श्राप जो है ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो नलकूवर और मणिग्रीव इतने सौभाग्यशाली रहे कि उनको नारद मुनि के तथा कथित शाप के द्वारा स्वयं श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, दर्शन हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हमें आप प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे किया। परंतु जिस भावना से नलकूवर और मणिग्रीव स्नान कर रहे थे वो अच्छा नहीं है। शुद्धिकरण की का जब प्रश्न आता है, ये हमारी चेतना या भावना के ऊपर भी निर्भर होता है। कोई व्यक्ति यदि अनुकूल भाव ग्रहण करके गंगा जी में स्नान करता है तो उसको बहुत लाभ होता है। दूसरी ओर नलकूवर या मणिग्रीव जैसे व्यक्ति, उनकी भावना बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए गंगा जी में स्नान करने से ज्यादा लाभ ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिलता है। और एक उदाहरण, रामानुजाचार्य का नाम तो आप सबने सुना है। जब रामानुजाचार्य एक छोटे बालक ही थे, शायद अपने पौगंड अवस्था में रहे होंगे या थोड़े से आगे अपनी किशोर अवस्था में भी शायद प्रविष्ट हो चुके होंगे, तो यादव प्रकाश नाम के एक अद्वैतवादी सन्यासी के शिष्य बने। उनसे वो वेदांत आदि पढ़ा करते थे। तो अद्वैत जो यादव प्रकाश जो हैं, अद्वैतवादी होने के नाते वो भगवान के दिव्य रूप का तिरस्कार करने लगे, अनादर करने लगे, जबकि वो अपने अलग अलग श्लोकों की व्याख्या करते थे। तब तो रामानुजाचार्य ने एक बार नहीं अनेकों बार कोई ना कोई विरोध किया और शास्त्रोक्त पद्धति से उन्होंने अपने ही गुरु को, अपने ही अध्यापक को हरा दिया। और धीरे धीरे रामानुजाचार्य के बुद्धि और ज्ञान की खबर सब जगह फैलने लगी। रामानुजाचार्य तो वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे कि श्री कृष्ण या श्री विष्णु परम सत्य हैं, वो एक दिव्य व्यक्ति हैं, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, और वैकुंठ जगत है और मुक्ति के बाद हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, भगवान के धाम में भी हम रह के भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे सारी बातें रामानुजाचार्य करते जा रहे थे तो यादव प्रकाश तो डर गए कि ये बच्चा इस तरह से जोरदार प्रचार करेगा तो हमारे अद्वैत सिद्धांत का क्या होगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक षड्यंत्र रचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, किसी न किसी तरह से रामानुजाचार्य की हत्या करनी चाहिए, हमारे अद्वैत संप्रदाय की रक्षा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम सब निकलते हैं गंगा जी की यात्रा के लिए और रामानुज को भी साथ में ले जाएंगे। कहीं एक जगह रामानुज को मार डालेंगे और फिर मार डालने के बाद हम गंगा जी में जाएंगे, स्नान करेंगे, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि गंगा जी में जो स्नान करता है ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। और फिर वापस लौट के हमारे गांव में कांचीपुरम में हम बताएंगे कि रामानुजाचार्य बेचारे, उनको किसी पशु ने मार दिया, जंगल में जब हम जा रहे थे उनका देहांत तो हो गया, बस। तो यादव प्रकाश आगे गए, परंतु रामानुज को उनके भाई गोविंद ने खबर पहुंचाई कि देखो ऐसे ये लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो बीच रास्ते से ही रामानुजाचार्य भाग के वापस आ गए। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि यादव प्रकाश जैसे भी भावना नहीं होनी चाहिए कि हम कोई पाप करेंगे, भले भले वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, फिर गंगा जी है ना हमारे लिए, हम स्नान करेंगे गंगा जी में फिर पाप से मुक्त हो जाएंगे। हरि नाम के प्रति भी ऐसे अपराध हो सकते हैं, सातवां नाम अपराध है, नामनो बलाद्यस्य ही पाप बुद्धि ही, नाम के बल पर पाप करना। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि हरि नाम बहुत शक्तिशाली है, समस्त पापों को नष्ट कर सकता है, इसलिए मैं पाप करूंगा, फिर हरि नाम लूंगा पाप को धुलाने के लिए, फिर से पाप करूंगा, ये बहुत अपराध युक्त भावना है। ऐसा करने से हम भक्ति में बिल्कुल प्रगति नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से गंगा जी के प्रति भी ऐसी भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। और वैसे हर एक व्यक्ति के अस्थि जो हैं वो गंगा जी तक पहुंचेंगी ये आवश्यक नहीं है। यदि उनके भाग्य नहीं रहे तो गंगा जी स्वीकार नहीं करेंगी। स्कंद पुराण में एक महिला का वर्णन है जिनके पुत्र का नाम था धनंजय, और ये महिला बहुत पापी थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र धनंजय ने अंतिम क्रियाएं सारी कर ली और फिर उनके अस्थियों को लेकर वो पहुंच गए वाराणसी गंगा जी में अस्थि विसर्जन करने के लिए। परंतु हुआ ये कि किसी एक व्यक्ति ने उस थैली को उठा लिया ये समझ कर कि कुछ दूसरी चीज है, और वो लेके चले गए। जब धनंजय ने देखा कि अरे ये अस्थि वाली थैली कहाँ गई, किसी ने किसी तरह से उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो जंगल में छोड़ दिया है, तो जंगल में कहाँ जाए, बहुत ढूंढा उन्होंने जंगलों में लेकिन नहीं मिली वो थैली नहीं मिली। आखिर धनंजय अपने माँ के अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे पुराण में बताया गया है कि सबका भाग्य नहीं होता, कि हर एक व्यक्ति ऐसे उनकी अस्थि के विसर्जन हो गंगा यमुना में, ऐसे जरूरी नहीं है। तो इसलिए यही हम यदि हम सही ढंग से रहें, अच्छे ढंग से भगवान की सेवा करें, तो चाहे हमारे अस्थि गंगा में हो या न हो, लेकिन हमारा उद्धार निश्चित है। वैसे गंगा जी हमारी भक्ति में बहुत सहायक है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम हरि नाम को छोड़कर, कृष्ण कथा को छोड़कर केवल गंगा स्नान ही करेंगे, ऐसा नहीं। वैसे भी गंगा स्नान कर करके हम इस स्तर में तो आएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। इसलिए बार बार शास्त्रों में कृष्ण भावनामृत की तुलना गंगा जी से की जाती है। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्श करके आता है, और भगवद गीता का संदेश भगवान के मुखारविंद से आता है। भगवान के मुख में और भगवान के चरणों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों ही हमारे लिए शुद्धिकरण के उपाय हैं। फिर भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का संदेश अधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के महात्म्य में बताया गया है, मलिने मोचने पुंसा, जल स्नानम दिने दिने, सकृद गीतामृत स्नानम, संसार मलनाशनम। जल स्नानम दिने दिने, जब हम प्रतिदिन साधारण जल में स्नान करते हैं, मलिने मोचने पुंसाम, शरीर का मल जो है वो शुद्ध हो जाता है। परंतु सकृत एक बार भी गीतामृत स्नानम, भगवान की कथा के अमृत में हमने यदि स्नान किया, संसार मलनाशनम, तो संसार का मल जो है वो धुल जाएगा। कितनी सुंदर बात है भगवत गीता के महात्म्य से। आगे इसी महात्म्य में कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम, विष्णु वक्त्राद् विनिःसृतम्, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत का जो अमृत है ये भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकला है। भगवत गीता जो भगवत गीता है महाभारत का सार है, और वह श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है, इसलिए ये अमृत है। गीता गंगोदकम पीत्वा, तो भगवत गीता रूपी गंगा के जल के अमृत का पान यदि हम करेंगे, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म हमें नहीं लेना पड़ेगा। न केवल कृष्ण कथा और कृष्ण नाम गंगा जी के जल से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सेवा करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभुपाद इसके बारे में बहुत विस्तार में चर्चा करते हैं अलग अलग स्थानों में। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते ही हैं, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ए तो मार गुण, तो नरोत्तम दास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध वैष्णव भक्त गोसाई के बारे में कहते हैं कि गंगा जी के जल का स्पर्श करने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, परंतु आपका दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति पूरी तरह से पावन हो जाता है। दूसरी शब्दों में भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने महान होते हैं कि यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं वो गंगा जी को भी शुद्ध करते हैं। जितने भी पाप छोड़ जाते हैं अन्य लोग, शुद्ध वैष्णवों के द्वारा वो स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत में ये भी बताया हुआ है, भवद्विधा भागवता तीर्थभूत स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वान्तः स्वेन गदाभृता, कि हे विदुर जी आप स्वयं एक तीर्थ स्थान हैं। भवत विधा भागवतास तीर्थभूत स्वयं विभो, आप स्वयं एक तीर्थ स्थान हैं, आप चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं, बल्कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाते हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं वो विराजमान हैं। तो इस तरह से शुद्ध वैष्णवों की भी, अशुद्ध वैष्णवों का गुणगान किया गया है। इसलिए जब हम गंगा जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत के इन महत्वपूर्ण अंगों को नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा या कृष्ण नाम का उच्चारण और वैष्णवों की सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब को जोड़ना चाहिए या इन सब कार्यों में गंगा जी की सेवा को भी जोड़ लेना चाहिए। अभी संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अब समय होते आ रहा है, कि गंगा जी की पूजा किस तरह से की जाती है। वैसे बहुत साधारण तरीका है, गंगा जी के जल में प्रवेश करके हम गंगा जी का जल गंगा जी को ही अर्पण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति भी कृष्ण की ऐसे ही की जाती है। हम भक्ति में क्या करते हैं, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्ति क्या चीज है? भक्ति वो पद्धति है जिसमें कि हमारे इंद्रियों का प्रयोग हम करते हैं इंद्रियों के स्वामी की सेवा में। तो हम अनेक चीजों का प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर का, हमारे मन का, बुद्धि का, तरह तरह के पदार्थ हमारे वातावरण में रहते हैं उनका प्रयोग करते हैं। परंतु ये सारी चीजें किनकी संपत्ति है? क्या ये हमारी संपत्ति है? नहीं, ये तो भगवान की संपत्ति है। जब हम किसी चीज को भगवान को अर्पण करते हैं तो हम भगवान की चीजों को ही भगवान को लौटा रहे हैं। तो इसमें जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान का कोई घटन नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। और जब भगवान को पुनः हम अर्पण करते हैं उसी वस्तु को, तो भगवान का ऐश्वर्य बढ़ नहीं जाता। उस कारण से भगवान अपने स्थान में आत्माराम हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, परिपूर्ण हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कि जैसे गंगा जी को से थोड़ा जल हाथ में लेने से गंगा जी का कोई भारी नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, और फिर उसी जल को हम पुनः गंगा जी में अर्पण करते हैं तो गंगा जी की कोई वृद्धि नहीं होती है, गंगा जी में बाढ़ नहीं आता है। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत की तुलना गंगा जी की पूजा से भी शास्त्रों में की गई है। भागवत में यह भी बताया गया है कि जैसे एक व्यक्ति अपने आप को खूब सजाता है, सजाकर अपना प्रतिबिंब किसी आईने में या दर्पण में देखता है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी सजाया हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप को सजाया हुआ है तो प्रतिबिंब भी वैसे ही दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान की चीजें भगवान को देते हैं तो भगवान का नुकसान नहीं, कोई लाभ नहीं। परंतु भगवान को इस तरह से ये अर्पण करने से जो अर्पण करने वाला व्यक्ति है वो भगवान का महान भक्त कह के जाना जाता है समाज में। ठीक उसी प्रकार से जो गंगा जी का जल गंगा जी को ही अर्पण करता है, फिर आगे चल के वो भी गंगा जी का एक महान भक्त जाना जाता है। तो इस तरह से गंगा पूजा भी बहुत सरल है, भक्तिमय ढंग से यदि हम करें तो गंगा माता हमारे अर्पण को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करेंगी, हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगी। चैतन्य भागवत में श्रीधर खोलावेचा नाम के एक शुद्ध कृष्ण भक्त का वर्णन है। वो बहुत गरीब थे और वो केले का व्यवसाय करते थे, केले के जो फूल हैं और तरह तरह की चीजें, केले के जो पेड़ से जितने भी संबंधित चीजें हैं वो बेचते थे, बहुत कम दाम में बेचते थे, कभी कोई धोखेबाजी नहीं करते थे अपने व्यापार में। दो चार रुपए उनको मिल जाते थे, दो चार पैसे जो मिल गए उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे, बहुत कम धन उनको मिलता था। और जो कम धन था उसका 50% वो गंगा जी की सेवा में प्रयोग करते थे, बाकी जो भी 50% बच जाता था, जो बहुत कम था, फिर वो अपने जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल करते थे। चैतन्य महाप्रभु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं और फिर भी वो श्रीधर खोलावेचा के साथ खूब लीला करना चाहते थे। वो बार बार प्रतिदिन आके श्रीधर खोलावेचा से झगड़ा करते कि श्रीधर तुम बहुत ज्यादा कीमत में बेच रहे हो, और श्रीधर कहते थे नहीं नहीं ज्यादा कीमत में नहीं, कम कीमत में दे रहा हूं। लेकिन बहुत बहस करके खींचा तानी करके वो श्रीधर को पूरी तरह से हैरान करके वहां से ले ही लेते थे जो उनको चाहिए था, और हैरान होकर श्रीधर उनको कम कीमत में ले जाते दे देते थे, चलो ले जाओ हे ब्राह्मण। कभी कभी जब निमाई पंडित थोड़ी ज्यादा जोर से बोलने लगते तो श्रीधर खोलावेचा घबरा जाते कि ये तो ब्राह्मण लंबे चौड़े हैं, ऊपर न जाने कुछ कर भी दे, तो दे देते थे ऐसे। कभी कभी बातों बातों में निमाई पंडित उनसे कहते, अरे श्रीधर क्यों मेरे साथ ऐसे बहस करते हो, मुझे तो मुफ्त में देना चाहिए, 50% तुम्हारी कमाई तुम्हारी आमदनी जो है तुम गंगा जी की सेवा में इस्तेमाल करते हो, और गंगा जी का स्वामी तो मैं हूं, गंगा जी तो मेरी सेविका है। और श्रीधर खोलावेचा क्या जाने कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कौन है, वो तो चैतन्य महाप्रभु को केवल एक ब्राह्मण समझते थे नवद्वीप के, भले वो कितने विद्वान क्यों न हो लेकिन है केवल ब्राह्मण। तो श्रीधर खोलावेचा ने सोचा कि अरे विष्णु विष्णु विष्णु, अपने कान बंद कर दिया, अरे ब्राह्मण कैसे भयंकर अपराध कर रहे हो, गंगा जी के प्रति ऐसे भला बुरा कहना ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते कि श्रीधर एक दिन तुम जान जाओगे, और जान ही गए। जब महाप्रकाश लीला के समय चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर खोलावेचा को अपने जितनी भी इच्छाएं थी हृदय की वो पूर्ण कर दी। चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपने सारे भक्तों को बुलाकर पूछा था कि तुम्हारी जितने भी इच्छाएं हैं वो कह दो, और किसी भी एक भक्त ने न किसी ने टीवी मांगी, न किसी ने गाड़ी मांगी, न किसी ने धन मांगा, उन्होंने किसी ने कहा मेरे जो भाई हैं वो भक्त नहीं हैं उनको जरा भक्त बना दीजिए, किसी ने कहा कि देखो मेरी पत्नी है या मेरे वो हैं मेरे ये रिश्तेदार हैं वो भक्त नहीं हैं उनको भक्त बना दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु सबों की इच्छाओं को पूर्ण करते जा रहे थे। जब श्रीधर खोलावेचा का समय आया तो उन्होंने पूछा, श्रीधर तुम्हें क्या चाहिए? तो श्रीधर खोलावेचा ने कहा कि हे प्रभु, आप अनेक जन्मों तक ऐसे ही मेरे पास आके बहस और झगड़ा करके मेरे से केले छीन के ले जाइए। ये थी श्रीधर खोलावेचा की मनोकामना। तो ये है बहुत प्रसिद्ध गंगा देवी के उपासक, जो इतने श्रेष्ठ कृष्ण भक्त भी थे। तो खैर ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके भाई विद्यावाचस्पति दोनों को बुलाया। दोनों ही बड़े पंडित थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि आप जगन्नाथ की पूजा करोगे, और विद्यावाचस्पति से आदेश किया आप गंगा देवी की पूजा करोगे। आप दारु ब्रह्म की सेवा करोगे, आप जल ब्रह्म की सेवा करोगे। हम तो सुबह को सुन ही चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण गंगा रूप में भी प्रकट होते हैं, अर्थात गंगा के माध्यम से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु गंगा जी को जल ब्रह्म कह के पुकारते हैं। गंगा जी की आरती होती है विशेष करके ऋषिकेश हरिद्वार वाराणसी आदि में, तो बड़े धूमधाम से की जाती है। फूल अगरबत्ती दिया इत्यादि से वो सारा वातावरण बहुत शोभायमान हो जाता है। बड़े बड़े जो दीप होते हैं जो पूर्व पंडित लोग घुमाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वाराणसी के घाट में हरिद्वार के घाट में ऐसे किया जाता है। और भक्त जो है वो आके एक वात है घी का जो, उसमें एक छोटे से पत्ते में रखते हैं दल में, जो कि एक नौके के आकार में होता है, और जला के फिर उसको गंगा जी में छोड़ देते हैं, और वो पत्ता जो है वो फिर बहते हुए जल में जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे पत्ते के नौके जिनमें दीप है वो गंगा जी में जा रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है वो। इस तरह से गंगा जी की सेवा लोग करते हैं, साथ साथ में वहाँ पे गीत वगैरह भी गाए जाते हैं, और जब गंगा जी में प्रवेश करके गंगा जी को ही अर्पण करते हैं जल, साथ साथ अनेक लोग पास में कोई शिवलिंग हो तो शिवलिंग को भी, शिव जी को भी ऐसे अर्पण करते हैं, क्योंकि शिव जी का संबंध गंगा देवी से बहुत गहरा है। इसलिए यहाँ पुकार लोगों की होती है, हर हर गंगे, हर मतलब शिव जी, क्योंकि शिव जी के जटाओं में तो थी गंगा जी काफी समय तक, और फिर वहां से प्रकट हुई। हमने आज सुबह को देखा था कि गंगा जी का और एक नाम है शैव सुता, शिव जी की पुत्री के रूप में भी वो जानी जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि यदि हमें कोई शिवलिंग नहीं मिले तो गंगा जी के तट पे जो भी पत्थर हो उसे शिवलिंग मान के उसको गंगा जी का जल अर्पण कर सकते हैं, और शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिव जी, हम गंगा जी का जल आपको अर्पण कर रहे हैं, हमारे हृदय को आप कृपया शुद्ध कीजिए, आप भी महान कृष्ण भक्त हैं, आपके पद चिन्हों में हम चलें, ऐसी हमें बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, हमारे हृदय में भी शुद्ध भक्ति आप बरसाएं। ऐसी भक्ति की प्रार्थना शिव जी से हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खैर काफी लंबा हो गया प्रवचन, खैर यह रहने का उद्देश्य तो यही था ना। तो गंगा सेवा और गंगा स्नान के विशेष करके इस विषय पर आज चर्चा हुई, और आगे चल के आने वाले दो चार दिनों में और बहुत सारे कथाएं हैं, गंगा जी गोलोक वृंदावन में, गंगा जी वैकुंठ में कैसे फिर वो भौतिक जगत में प्रविष्ट होती हैं, भौतिक जगत में आने के बाद फिर कौन सी लीलाएं होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, अब इनके बारे में आगे चल के हम कभी सुनेंगे। तो आपके कोई एक या दो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़े वैष्णव भजन गाएंगे इस समय। मुझे लगता है कि दोपहर का प्रसाद काफी देर से होने के लिए अभी भूख नहीं लगी होगी आपको, नहीं लगी है ना, तो और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे फिर, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो। हाँ कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि गंगोत्री से उद्गम कैसे हुआ है। तो वैसे गंगोत्री का ही एक भाग है, ये बर्फ का एक पहाड़ है, अंग्रेजी में इसको ग्लेशियर कहते हैं। ये गौमुख से गंगा की धारा बहती है, वहां से बर्फ पिघलते रहता है और वो ये जल आता है, लेकिन वहां जल पहुंचता कैसे है, गंगा जी का जल ऊपर के लोगों से, इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ आपका प्रश्न था इधर। हाँ प्रश्न ये है कि वाराणसी में मणिकर्णिकार घाट में शव को आधा जला के गंगा में विसर्जित किया जाता है, तो उसका क्या, उसकी क्या गति होती है? अभी आधा जला के उसमें डालना मुझे इसके पीछे क्या रहस्य है ये पता नहीं है, परंतु अवश्य जब शव पूरी तरह से जल जाता है फिर उसके बाद अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, इतना तो प्रथा है। अब मणिकर्णिकार घाट में ऐसे कोई विशेष प्रथा होगी तो हमें पता नहीं, इसके बारे में पूछताछ करना होगा। यदि ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, हमने इसके बारे में सुना नहीं है। हो सकता है कोई विशेष बात कि गंगा जी इतनी पवित्र हैं तो इनका लाभ तो मिल ही जाता होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ जी, हरे कृष्णा। अच्छा, प्रश्न ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहीं नहीं आता है। आता है, परंतु पवित्र नदियों की संख्या इतनी सारी है कि सब जगह नहीं आता है। महत्व अधिक गंगा जी का है। ब्रह्मपुत्र नदी भी वहां मान सरोवर आदि से आके, फिर वो भी पद्मा नदी से आगे चल के फिर मिलती है बंगाल में। गंगा जब जाती है समुद्र की ओर तो फिर वो पद्मा बनती है, दूसरे भी हुगली नदी बन जाती है। तो ब्रह्मपुत्र ये भी अवश्य बहुत पवित्र नदी है, कोई संदेह नहीं है इसके बारे में, उल्लेख होता है। यहाँ तक कि हमारे बेलगाम के पास में जो नदी है मलापहारी, वो भी शुद्ध मलप्रभा कहते हैं। मलापहारी वास्तव में पौराणिक नाम है, ये मलापहारी का उल्लेख भी पुराणों में है। तो ऐसे अनेक नदियां हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि कितने सारे पवित्र नदियों का लाभ हम उठा सकते हैं। इसलिए इन नदियों की रक्षा करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी सभ्यता के लिए। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में कहा गया है कि एक शुद्ध भक्त गंगा जी के काफी समय जलपान करने से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इसको इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, अभी तो हम बताए थे कि गंगा जी को भी एक शुद्ध भक्त पवित्र कर सकते हैं, और यही तो एक संकोच गंगा देवी को था, परंतु भगीरथ महाराज ने समाधान कर दिया गंगा देवी को और फिर वो आई। गंगा देवी को ऐसे काफ़ी कठिनाई हो ही जाती है क्योंकि इतने सारे लोग आके अपने ढेर सारे पाप डाल देते हैं कि गंगा देवी को कष्ट होता है। क्योंकि इनकी सेवा है तो वो कर देती हैं, परंतु कष्ट तो होता है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार जब गंगा जी बहुत पीड़ित हो गई इतने सारे पाप से के बोझ से, उनके लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था, तो वो शिव जी के पास गई और कहने लगे कि मैं क्या करूं, इतने सारे पाप हैं, मुझे सहन करना बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूं, तो कोई रास्ता मुझे बताइए। तो शिव जी ने गंगा देवी से कहा कि हे गंगे, ये तो आपकी सेवा है, जो बद्ध जीवों के पापों को स्वीकार करना, इसलिए भगवान ने आपको शक्ति भी दी है और आपको ये सेवा भी दी है, आप बहुत भाग्यशाली हो। और यदि आपको इस समय कष्ट हो रहा हो इस पापों के बोझ से, तो मेरा सुझाव है कि आप कावेरी नदी में जाके स्नान कर लेना। तो वहां कावेरी नदी में स्नान करोगे, तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे बताया जाता है, ऐसे प्रथा है कि कार्तिक महीने में गंगा जी कावेरी में जाती हैं, स्नान कर लेती हैं, क्योंकि कावेरी को ऐसे वरदान मिला था विशेष करके कार्तिक महीने में के लिए। तो गंगा देवी कार्तिक महीने में कावेरी में जाके स्नान करती हैं और खुद फिर अपने पापों से मुक्त हो जाती हैं, और साथ साथ जो शुद्ध वैष्णव आते हैं फिर उनके द्वारा भी गंगा जी अपने पाप के बोझ को हल्का कर देती है। ऐसे कोई एक प्रश्न है कि कोई भक्त गंगा जी से कोई शिलाएं पत्थर जो है वो ले जाते हैं, क्या वो अपने घरों में ले जा सकते हैं? ऐसे कोई आपत्ति तो नहीं है मेरे ख्याल से, जैसे कि गिरिराज शिलाओं के साथ में है, फिर भी जब ले जाते हैं तो सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, सही आदर देना चाहिए इन शिलाओं को। और कोई प्रश्न, अंतिम प्रश्न हो? प्रश्न ये है कि हम यदि यहाँ गंगा जल साथ में ले जाएं तो वहाँ किसी को भेंट में दे सकते हैं क्या? अवश्य दे सकते हैं और देना चाहिए। तो आप में से सब थोड़ा थोड़ा गंगा जल जितना हो सके उतना भर के ले जाइए। आप जो विदेश से आए हैं यहाँ से, आप वहाँ भी ले जाइए, वहाँ के भक्तों को भी दे दीजिए। और दूसरी बात है, प्रश्न ये है कि क्या हमारे ऑल्टर पे या सिंहासन पे हम रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, गंगा जल की पूजा कर सकते हैं ऑल्टर में रख के केवल, या गंगा जी का प्रयोग जो है, गंगा जल का प्रयोग भगवान की सेवा में या उनकी आराधना में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अंतिम प्रश्न। हमने सुना है कि गंगा जी शिव जी की पत्नी हैं, लेकिन हम अब सुन रहे हैं कि वो उनकी पुत्री हैं, इस दृष्टि से कि उनकी जटाओं से वो उत्पन्न हुई, इसलिए इस दृष्टि से कहा जाता है कि उत्पन्न होने का स्थान, प्रकट होने का स्थान, इस दृष्टि से। वैसे जाह्नवी कहा जाता है, वो जह्नू ऋषि की भी पुत्री नहीं है वास्तव में, केवल क्योंकि उनके शरीर से उन्होंने प्रकट कराया इसलिए उनको पुत्री कहते हैं। ये काव्यात्मक भाषा है कहने के लिए। तो अभी हम थोड़ा भजन करेंगे फिर, ठीक है? कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोह, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंद जमुना जय जय महावन, केशी घाट वंशी वट द्वादश कान, द्वादश कान, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद 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 यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनु वत्स जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरे जय पूर्णमासी जय आभिरनाग जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजरा जय राम घाट जय रोहिणी नंद जय जय वृंदावन वासी जत ज जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या ग भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चरण श्री रास मंडल जय जय राधाश्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे यह ब्रजते श्री जान वा पाद पद्म कोरिया स्मर दीन कृष्ण दास कहे नम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna Hare 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 Rama Hare राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय नीताय गौरांग नीताय गौरांग नीताय गौरांग गौर हरे गौरांग नीताय गौरांग नीताय गौरांग गौर हरे नीताय गौरांग नीताय गौरांग नीताय गौरांग गौर हरे नीताय गौरांग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे श्री हरि नाम संकीर्तन के जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय श्री महाप्रसादम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे